ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਖੁਰਜਾ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 21-22 ਵਰਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਆਕਰ ਆਪ ਸਭੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਪੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਮੇਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਮੇਂ, ਬਾਂਦਾ ਮੇਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਮੇਂ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਬ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਔਰ ਆਪ ਫਿਰ ਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਖੁਰਜਾ ਮੇਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਯਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਔਰ ਵੋ ਸਮਾਗਮ ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਸਥਾਨੋਂ ਪੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਮੇਂ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹ ਸੱਤ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਲੀਏ ਆਤਮਾ ਹਰ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁਸ਼ਤਨ ਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਏਕ ਸਫਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਲੀਓ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰੋਂ ਨੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਹਰ ਯੁਗ, ਹਰ ਦੌਰ ਮੇਂ ਯਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਇਸ ਗਫਲਤ ਕੀ ਨੀਂਦ ਸੇ ਉੱਠ ਜਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਛਿੰਤਾ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਾਦਾਨ ਹੋਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਮੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਮੇਂ ਕਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਂਧੀ ਕਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੀ, ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਮਾਲਿਕ ਕਾ ਇਸ ਰੂਪ ਮੇਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਜਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਯਾ ਮੁਲਕ ਕੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਬੜੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਕੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਠਹਿਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਅਭੀ ਇਹ ਹਵਾ ਚਲੀ ਤੇਜ਼, ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਬਨਾਵਟ ਮੇਂ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੋ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਇਹ ਖੰਭੇ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹਿਲਤੇ ਹੈ, ਮਕਾਨੋਂ ਕੇ ਛੱਤ ਵੀ ਉੜ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਦੀਵਾਰੇ ਗਿਰ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਓਂ ਮੇਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋ ਵੈਸੇ ਕਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਸਥਿਰ ਕਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਅਡੋਲ ਕਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਤੋ ਭਕਤ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਜੁੜ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਮੇਂ ਇਸੀ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇਂ ਰੰਗੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਇਸੀ ਕੇ ਹੀ ਨਗਮੇ ਗਾਤੇ ਹੈ, ਇਸੀ ਕੋ ਹੀ ਕਰਤਾ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕਰ ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਕਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਆਪ ਵੀ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਇਸ ਰੰਗ ਕੋ ਵੀ ਆਪ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਨ ਇਸੀ ਕਾ ਆਧਾਰ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ये महापुरुषों के वचन भी श्रवण कर रहे हैं, ये दर्शन भी कर रहे हैं और ऐसी घड़ियां जो मिली इसका शुक्राना भी कर रहे हैं कि दातार तेरी कृपा है, ये तेरा शुक्राना है, तूने ऐसी घड़ियां दी हैं, वरना तो ये समय यूं ही बीत जाता है और ये श्वास जो हैं ये तो छिनते ही चले जा रहे हाथों से, बीतने को सारा दिन बीत जाता है, बीतने को दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन इन बीतते हुए लम्हों, इन बीतते हुए घड़ियों, इन बीतते हुए पलों में अगर कीमत है तो उन घड़ियों की है जब तेरी याद मन में बसती है, जब तेरे भक्तों के दर्शन हो पाते हैं, जब कानों को तेरी महिमा सुनने को मिल जाती है, जब इन हाथों से सेव कमा लेते हैं, सेवा कर पाते हैं, इसी प्रकार से इस रसना से तेरे गुणगान कर पाते हैं, तो तभी ये घड़ियाँ भी मुबारक हो जाती हैं, ये कान हाथ, ये ज़ुबान, ये आँखें, ये मुबारक हो जाती हैं, ये तन मुबारक हो जाता है, धन सेवा में लगता है वो मुबारक हो जाता है, और इसी प्रकार से इनको पवित्रता मिल जाती है, जैसे कथन महापुरुषों का कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान और मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण, कि इस प्रकार से ये तन मन धन की पवित्रता, इनका महत्व ये तभी बनता है जब इसके साथ नाता जुड़ता है, जब इसको समर्पित होते हैं और इसके एहसास में तन मन धन का इस्तेमाल करते हैं, इसको उपकार में लगाते हैं, तो तभी ये पवित्रता और पावनता ये इसको मिलती है। तो आज भी यहाँ पर महापुरुष भक्तजन ये यही संदेश, यही पैगाम दे रहे थे कि हे इंसान, हे मानव, तू भी इन इसका एहसास कर कि ये घड़ियाँ जो है ये बीत रही हैं, ये अवसर बीतो जात है, ये अवसर बीत रहा है, ये हाथों से निकलता चला जा रहा है, तो तू इस ठहरे हुए परमात्मा के साथ ये नाता जोड़ ले, ये अजन्मी परम सत्ता है और यही एक आनंद का स्रोत है, इससे नाता जोड़कर आनंद की अवस्था में तू आ जा और जीवन को आनंदमय तू ये बना ले, और यही एक आनंद ठहरे हुए से इस स्रोत से ही मिल पाता है। दुनिया में तो हम जानते हैं, जैसे अभी दास ने जिक्र किया कि यहाँ तो उतार चढ़ाव होते हैं, यहाँ तो हम देखते हैं बदलाव होते हैं, और ये जो अगर इंसान एक सच्ची खुशी की और सुख की एक अभिलाषा करता है तो वो भी संसार से, तो वो महापुरुष कहते हैं कि जैसे बादल होते हैं, अब बादल होते हैं, अब उसकी छाया में कोई तपती हुई धूप में कोई आनंद लेना चाहे तो वो बादल कितनी देर रहते हैं, जैसे अभी इतनी तेज़ हवाएं, इतनी तेज़ हवाओं में कभी देखें तो दिन में तो बादल भी इतनी रफ्तार से उड़ते चले जाते हैं, तो हवा तेज़ आए बादल उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर हम अपने आप को कड़कती धूप में पाते हैं। तो लेकिन ये परमात्मा, ये शाश्वत परम सत्ता है, यही एक आनंद का स्रोत है, ये आनंद का रूप है, इसीलिए इससे ही अपनी मनोवृत्ति जोड़ने की महापुरुष प्रेरणा देते हैं कि उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, कि उठते बैठते इस हरि का एहसास रहे, तू ही नंकार करो ते हर पल इसनु याद करो, इस अमृत नु रज रज पियो तन सौखा दिल शाद करो, तो इस अमृत को हम पीते चले जाएं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाना इस श्वास का आवन होए ना होए, तो ये श्वास श्वास कदम कदम एक आठ पहर आरा दिए, आठों पहर तेरी आराधना होती चली जाए और हम तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक तेरे रंग में रंगे रहें, तेरे रंग को उतार कर अपने मन से ये हम जितना भी संसार में विचरण करते हैं वो जो है वो बेमायने हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है और ना जीवन में आनंद आता है, ना जीवन में नेकियां आती हैं, ना वो सद्गुण हमारे जीवन में आ पाते हैं तेरे से नाता तोड़ने के कारण, तो तुझ संग ये नाता ये जुड़ा रहे, आठों पहर जुड़ा रहे, श्वास श्वास जुड़ा रहे, ये भक्त महापुरुष ये प्रार्थना करते हैं, ये अरदास करते हैं और मांग भी यही इनकी मांग होती है कि मांगणते मांगू नीका, हरि जस गुर ते मांगना, कि मैं यही मांग मांगता रहूं, यही अरदास मेरी है कि हरि यश, ये हरि यश होता चला जाए और मैं इसको ही आधार बांधकर अपने इस जीवन को एक सुंदर रूप मैं देता चला जाऊं। और इसी प्रकार से भक्तों ने इसी को ही विशेषता दी, चाहे छोटे सा भक्त प्रहलाद हो वो भी इसी को विशेषता देता है, चाहे हनुमान जी हैं इसी को विशेषता देते हैं, अगर शबरी है इसी को विशेषता देती हैं, मीराबाई हैं इसी को विशेषता देते हैं, अगर कबीर जी हैं वो भी इसी को महत्ता देते हैं। और इस प्रकार से तमाम भक्तजन संत जनों की वाणी जब हम श्रवण करते हैं वो इसी की ही प्रधानता मानते हैं, और आप भी कहते हैं कि धन्य निरंकार, कि हे निराकार तू ही धन्य है, ये मेरी ताकत मेरी दौलत नहीं, ये मेरी अकल मेरी स्यानक मेरी विद्वता नहीं, ये मेरी पढ़ाइयाँ और मेरी पोजीशन नहीं, अगर धनता है तो दातार तेरी है। और ये मुझे एहसास ये हमेशा ये बना रहे, वरना संसार में हम देखते हैं कि संसार कितना एक अपने आप को महत्व देता है, अपनी विद्वता को महत्ता देता है, अपनी लियाकत को देता है, अपनी दौलत को देता है और दूसरों को तुच्छ करके देखता है, इसलिए अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और वही अभिमान इसको ले डूबता है। जैसे एक जुगनू की मिसाल आती है, जुगनू ने सोचा कि अगर रोशनी है तो मेरे ही कारण ये हो रही है, लेकिन जब सितारों की तरफ ध्यान गया तो सोचने लगा कि ये सितारे तो मेरे से भी ज़्यादा टिमटिमा रहे हैं, ये तो ज़्यादा इनकी रोशनी नज़र आ रही है। अब सितारों को भी गुमान हो गया कि ये रोशनी हम में जितनी है कितनी किसी में भी नहीं, लेकिन जब चाँद की तरफ ध्यान गया तो एहसास हुआ कि चाँद तो कहाँ पर इसकी रोशनी कहाँ कहाँ जा रही है, ये तो हमसे भी ज़्यादा है। और चाँद को ऐसा गुमान हो गया कि मेरे से ज़्यादा रोशनी हो ही नहीं सकती, लेकिन जब सूर्य की तरफ ध्यान गया कि मुझ में भी तो रोशनी सूर्य से ही आ रही है और सूर्य की तुलना मेरी रोशनी में कहाँ अधिक है, वो तो मैं कहीं मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम देखें कि एक कदम कदम के ऊपर इंसान नाना रूपों में ये अभिमान और अहंकार करता है, लेकिन वो जाके कहाँ पर आखिर में जाकर चांद जब सूर्य को महत्ता दे रहा है तो ये भक्त जो हैं ये कदम कदम के ऊपर ये एहसास करते हैं कि दातार तेरी ही महत्ता है और तेरा एहसास ये मुझे बना रहे और तेरी महत्ता का हमेशा एहसास बना रहे, तेरे रंग में हमेशा मैं रंगा रहूं। और ये दातार कृपा कि मुझे ये बोध करा दिया, तेरा तेरी सर्वव्यापकता का बोध करा दिया और तू कण कण में है ये ज्ञान की दृष्टि से अब देख पा रहा हूँ, और ये भी मुझे दृष्टि मिल गई कि कण कण में ही नहीं तू घट घट में भी है, और घट घट में है तो फिर मैं घट घट में तेरे दर्शन कर रहा हूँ तो किसको नीचा करके देखूँ, किसकी जाति नीची अपनी जाति ऊंची मानो, ये तो सब तेरे ही रूप हैं साहेब, तेरी साहेबी घट घट रही समाए, जीव मेहंदी के लाल पात में लाली लखी ना जाए, कि घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि घट घट में तेरा ही तो रूप है, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक पूर्य और सर्वथाई, कि हे मालिक तू तो कणकण में है तू तो घटघट में है, तो फिर घटघट में तेरा दर्शन कर रहा हूँ तो फिर अब मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए कोई बेगाना नहीं है, अब मैं किससे नफरत करूँ, ये तो तेरा ही नूर इनमें बसता है आत्मा के रूप में। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर नफरतों से दामन छूट जाता है, जब तक अज्ञानता होती है, जब तक भेद वाली दृष्टि होती है, जब तक इसके नूर का दीदार नहीं करते हैं उतनी देर ही घृणा और नफरत की आग में जलते हैं, उतनी देर ही हमारे लिए जाति ऊंची नीची जाति इत्यादि ये एक हमारे लिए मान्यताएं रखते हैं, इनका महत्व हमारे लिए होता है और इसी के कारण हम दीवारें खड़ी करते हैं, एक दूसरे ऊपर जुल्म करते हैं, अपने ऊपर अभिमान करते हैं कि मेरी जाति ऊंची है, इसकी जाति नीची है इत्यादि। इस प्रकार से मैं गोरा हूँ, ये काला है। जैसे आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे साउथ अफ्रीका, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपनी ये यात्रा इस रूप में आरंभ की, जब उनके मन में एक ऐसी एक हालातों को देखकर एक ऐसा बीज अंकुरित हुआ कि किस तरह से इंसान इंसान को का दमन कर रहा है, ये भेदभाव कर रहा है। और इस प्रकार से उस वक़्त भी और उसके बाद भी कई बरस इस तरह से सिलसिला चलता रहा वहाँ साउथ अफ्रीका में, कि रंग के आधार के ऊपर कि काले जो हैं उनको, जहाँ गोरे होते हैं वो फैसिलिटीज़ कालों को नहीं मुहैया की जाती थी, उनको बैन किया हुआ था कि वो उन फैसिलिटीज़ को नहीं वो उसका आनंद ले सकते, उसको इस्तेमाल कर सकते इत्यादि। तो इस प्रकार से कहीं पर रंग को नाम का लेकर वास्ता, कहीं पर जाति का वास्ता देकर, कहीं पर मज़हब और धर्म का नाम लेकर, कहीं पर अल्लाह और राम का नाम लेकर, इस मालिक प्रभु परमात्मा के नाम को आधार बनाकर एक वैर ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते जलाते आए हैं। लेकिन जिनको जागृति मिल जाती है, जो इसका नूर देखते हैं, जो जान जाते हैं कि ये सारे बंदे मालिक की संतान हैं, एक प्रभु परमात्मा के परिवार का अंग हैं और मैं भी इसी परिवार का अंग हूँ, इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा लगाया गया, जो ये शब्द हमें वेदों से श्रवण करने को मिले, तो ये वसुधा वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा और कुटुंब, ये वसुधा तमाम धरती के ऊपर बसने वाले जितने भी हैं, ये कुटुंब एक ही परिवार का अंग हैं। और ये परिवार किसका है? ये खुदा का परिवार है, ये अल्लाह का परिवार है, ये राम का परिवार है, ये ईश्वर का परिवार है, ये निराकार का परिवार है। तो जब एक ही पिता है, परम पिता जिसको हम कहते हैं, तो फिर ये भेद वाले भाव और फिर तफरके, फिर एक दूसरे को दुत्कारना, ये हमें हमारी अज्ञानता के प्रमाण पत्र हैं। चाहे भले हम मान रहे हों कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े पठन पाठन करने वाले हैं, हम बड़े जप तप स्नान करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा इंसानों से व्यवहार प्रमाणित करता है कि वो सब कुछ करने के बावजूद तुम्हारी अज्ञानता अभी भी कायम है, अभी भी तुम्हें वो दृष्टि नहीं मिली है, अभी भी तुमको वो बोध प्राप्त नहीं हुआ है जो कबीर जी को हुआ है कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे, कि एक कुम्हार बर्तन बनाता है एक ही मट्टी से। और ये खुरजा तो वैसे भी पॉटरी के उस प्रकार से मशहूर है, और यहाँ पर भी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, नाना रूप दिए जाते हैं। तो माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, कि ये माटी एक अनेक भांति कर, मिट्टी एक है लेकिन अनेकों भांति से, ये मिट्टी पांच तत्वों के रूप में है, पांच तत्व का पुतला नानक मेरो नाए, कि हम पांच तत्व के ही बने हुए हैं, और पांच तत्वों के बने हैं गोरे भी, काले भी, अमेरिकन भी, यूरोपियन भी, चाइनीज़ भी, अरबी भी, हिंदुस्तानी भी, पाकिस्तानी भी, औरत भी, मर्द भी, ऑफिसर भी, एक सर्वेंट भी, शासक भी, और प्रजा भी, राजा भी, सब पांच तत्वों के हैं, किसी में एक तत्व ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। अगर कोई जाति के लिहाज से सोच रहा है ऊंची जाति वाला हूँ, तो एक तत्व या दो तत्व ज़्यादा नहीं है उसमें, सब में पांच तत्व हैं। वही माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे, कुम्हार भी एक और मिट्टी भी एक, और एक ही नूर बस रहा है, तो फिर भेद क्यों आ गए? तो यही महापुरुषों का अभिप्राय है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। वैसे ही मध्य अप्रैल से मध्य मई तक ये गाय बगाए एक दो दिन तीन दिन बाद ऐसी आंधी चलती है हर साल, और अभी भी दिल्ली से भी फ़ोन आई और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बरसात भी हो रही है, आंधी भी आ रही है, तो वहाँ क्या हाल है? तो यहाँ यही बताया कि यहाँ अभी इंद्र देवता तो वहाँ ड्यूटी दे रहा है, यहाँ तो अभी पवन देवता ही चल रहा है। और इस प्रकार से थोड़ा सा छिड़काव तो अभी हुआ था, तो मिट्टी को बिठाने के लिए शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि ये अपने अपने घरों की तरफ जाएं और फिर थोड़ा सा मिट्टी को बिठाया जाए। तो इसलिए दास अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करते हुए आपसे इजाज़त चाहेगा इसी अरदास के साथ कि जहां आपको ये हमेशा ही ये रंग चढ़ा रहे, ये मालिक का एहसास बना रहे, प्यार प्रीत निम्रता वाले गुणों से युक्त रहें और साथ ही साथ दातार सबको दुनियावी सुख भी प्रदान करे। सत संगत जी धन्य का।